दिशांक पृथ्वी और केशव सिंघानिया ने अपने आदमियों के साथ मिलकर मर्चेंट फैमिली के विला पर हमला बोल दिया था। ये कोई छोटा हमला नहीं था, उन्होंने सबसे पहले विला के आगे के हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। फिर उनकी आर्मी मर्चेंट फैमिली की सिक्योरिटी आर्मी से भिड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। अर्पित और आदित्य को लगा कि ये हमला उनके किसी दुश्मन ने किया है, पर गौतम मर्चेंट की तेज निगाहों ने ये समझ लिया था कि ये हमला इशिका और अभिमन्यु की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लिए प्लान बी पर काम करते हुए वहां से निकलने का सोचा। उनके जाने के बाद उस जगह को पूरी तरह बर्बाद किया जाना था। आदित्य और अर्पित तो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इशिका की टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद गौतम मर्चेंट उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। गौतम ने आदित्य और अर्पित को वहां से जाने को कहा और खुद इशिका को ढूंढने के लिए निकल गए थे। गौतम ने अपने ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करते हुए कहा, पता करो वो लोग लैब से निकलकर कहां गए थे, लगभग 15 मिनट पहले हमने उन्हें लैब के अंदर छोड़ा था। जी सर, अगर वो लोग अंदर हैं तो हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन बाहर लगे कैमराज पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, कंट्रोल रूम में मौजूद गार्ड ने कहा। गार्ड ने लगभग 15 मिनट पहले की फुटेज चेक की जब इशिका और अभिमन्यु लैब के अंदर थे। वो दोनों लैब से बाहर निकल रहे थे। अभिमन्यु ने इशिका से कहा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ऊपर से उन लोगों को हम पर, उससे पहले हमें यहां से उन लोगों तक पहुंचना होगा। हाँ, उन्हें पता चल गया तो वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। माँ और श्रुति आंटी को बाहर निकालना है, हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे साथ उनकी भी जान जा सकती है, या ये लोग हमें लेकर उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, इशिका ने चिंता जताते हुए कहा। तेज चलने की वजह से वो हांफने लगी। ऐसा नहीं था कि इशिका कमज़ोर थी, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ किसी भी मामले में कम नहीं थी, लेकिन लगभग 3 दिन पहले उसका इन्फ्यूज़न हुआ था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी तो तेज़ चलने की वजह से वो थकने लगी थी। चलते हुए अचानक अभिमन्यु रुक गया। उसने देखा इशिका खासा पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने अचानक इशिका को अपनी बाहों में उठाया और तेज़ कदमों से चलने लगा। मेरे रहते हुए तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्द ही उनके पास पहुँच जाएंगे, अभिमन्यु ने जवाब दिया। लगभग 7-8 मिनट में वो राधिका और श्रुति के कमरे की तरफ पहुंच गए थे। अंदर राधिका और श्रुति भी घबराई हुई थीं। राधिका को अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने बम धमाके की आवाज़ सुनी उसने श्रुति की तरफ देखकर घबराकर कहा, वो लोग मेरी इशिका को लेकर गए हैं, कहीं वो उसे दूर तो नहीं लेकर जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने ये ब्लास्ट वगैरह किया है। तुम जानती हो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्होंने कहा था वो बदल गए हैं। तुम पहले खुद को शांत करो, मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है, श्रुति ने जवाब दिया। वो खिड़की से बाहर देखने लगी तो उसे आगे का हिस्सा बर्बाद हुआ दिख रहा था। उसने राधिका की तरफ पलटकर कहा, ये हमला किसी और ने उन पर करवाया है, उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। राधिका, हमें यहाँ से दूसरी तरफ जाना चाहिए, वरना उनके चक्कर में हमारी भी जान चली जाएगी। नहीं, मैं इशिका को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी एक बेटी को खो दिया है, दूसरी को नहीं खो सकती हूँ, राधिका ने तुरंत वहां से जाने से मना कर दिया। राधिका अपनी जिद पर अड़ी थी। श्रुति अच्छे से जानती थी कि राधिका किसी की नहीं सुनती है। वो उसके पास आई और उसे प्यार से समझाते हुए बोली, इशिका उनके साथ है, तुम जानती हो वो उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे में वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज यहाँ से चलो, हम बाहर जाएंगे तो हमें इशिका और अभिमन्यु भी मिल जाएंगे। श्रुति ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने अभिमन्यु इशिका को गोद में उठाए हुए खड़ा था। राधिका को देखते हुए उसने इशिका को नीचे उतार दिया था। उन दोनों को सही सलामत देखकर राधिका की जान में जान आई। राधिका ने जल्दी से इशिका को गले लगाया और कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस तरह बेपरवाही से नहीं घूमना चाहिए, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, डैड और बाकी सब कहाँ हैं? इशिका उनसे अलग होकर बोली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा, ये अटैक दिशांक ने ही करवाया है, हमारे पास बचकर निकलने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, इससे पहले कि वो हम तक पहुँचे हमें खुद को बचाना होगा, लेकिन अब वो बदल गए हैं, हम उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आराम से बैठकर भी बात हो सकती है, राधिका ने जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से मर्चेंट फैमिली जिस हिसाब से बिहेव कर रही थी, राधिका को यही लगने लगा था कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है और पूरे दिल से अपना लिया है। ऐसे में कोई भी लड़की अपने परिवार को अकेले ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहेगी। ऐसा ही कुछ हाल राधिका का था। अभिमन्यु ने मामले को संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम बाहर चलते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तुम सब लोग साथ में गए थे, तुमने उन्हें छोड़ क्यों दिया? राधिका ने पूछा। हमने उन्हें नहीं छोड़ा है, अटैक होते ही वो खुद बिनो वहां से सब कुछ संभालने के लिए निकल गए, और वैसे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसी समझदार औरत उनकी बातों में कैसे आ सकती हैं। आज भी वो इशिका को टेस्ट के बहाने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने के लिए आए थे, अभिमन्यु ने सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा। उसकी बात सुनकर वो सब उसे हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने उनकी बातें सुन ली थी। वो ये बात समझ गए थे कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने से बात नहीं बनेगी, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। अब प्लीज चलिए यहाँ से। इशिका को पहले ही उन पर शक था, इस वजह से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो वहीं राधिका का चेहरा उतर गया था। ऐसा नहीं था कि उसे पहली बार मर्चेंट फैमिली की तरफ से धोखा मिला था, लेकिन एक बार फिर से उनकी तरफ से धोखा और छल कपट देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। श्रुति ने उसका हाथ सहलाकर कहा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम कैसा फील कर रही हो। आज से 23 साल पहले भी उन्होंने यही किया था जब तुमने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई थी और वो इसका फायदा उठाना चाहते थे। अगर हम उस वक्त नहीं भागते तो आज भी तुम उनके यहाँ कैद रहती। ये वक्त इमोशनल होकर सोचने का नहीं है, हमें निकलना होगा, अभिमन्यु ने उन्हें याद दिलाया। वो सब वहां से निकलने के लिए तैयार थे। अभिमन्यु ने एक बार फिर से इशिका को अपनी गोद में उठा लिया था ताकि उसे चलने में दिक्कत ना हो। श्रुति ने राधिका का हाथ पकड़ा और वो सब वहां से निकलने लगे। वहीं मर्चेंट फैमिली का गार्ड सीसीटीवी कंट्रोल रूम से सब कुछ देख रहा था। उसने गौतम मर्चेंट को अपडेट देते हुए कहा, वो सब इस वक्त राधिका जी के कमरे से निकल रहे हैं, उन्होंने लिफ्ट ली है और वो सीधे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। इतना कहकर उसने स्क्रीन से ध्यान हटा दिया था। गौतम सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर जाने लगा। वो लिफ्ट के आगे आकर खड़ा हो गया था। जैसे ही लिफ्ट रुकी तो वो दंग रह गया, लिफ्ट खाली थी, उनमें से कोई वहां पर नहीं आया। गौतम ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और फिर से उसे कॉल पर कनेक्ट करके कहा, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, वो लिफ्ट में गई जरूर थी लेकिन नीचे नहीं आई। जल्दी देखो वो इस वक्त कहाँ पर है, अगर वो नहीं मिली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये अभिमन्यु का ही प्लान था। वो लोग लिफ्ट के अंदर गए और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने के बाद उन्होंने बस ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। उसके तुरंत बाद अभिमन्यु ने फिर से उसी फ्लोर का बटन दबाकर लिफ्ट को रोक दिया था। उसके बाद वो बाहर निकल आए थे। बाहर आने के बाद अभिमन्यु कैमरे से छुपते हुए उन्हें दूसरी तरफ की सीढ़ियों से बाहर की तरफ ले जाने लगा। गौतम जब लिफ्ट के पास में खड़ा उनके आने का इंतजार कर रहा था और उस गार्ड पर चिल्ला रहा था, तब उन्होंने उन्हें देख लिया था।
गौतम को देखते ही राधिका ने अपनी मुट्ठी बांध ली थी। उसका मन किया कि वो जाकर उनसे पूछे कि क्यों वो अपने स्वार्थ के चलते बार बार अपने ही परिवार की बलि चढ़ा देते हैं, पर ये सही वक्त नहीं था। फिलहाल राधिका के लिए इशिका की जान बचाना जरूरी था, जो कि प्रेग्नेंट भी थी। उधर एक रास्ता है, यहाँ से हम विला के बैकयार्ड में पहुँच जाएंगे, अभिमन्यु बोला। वहां रहते हुए अभिमन्यु ने किसी न किसी बहाने से बाहर के रास्तों को ढूंढ लिया था। घर से बाहर निकलने के काफी सारे छुपे हुए दरवाजे बनाए गए थे। वो दरवाजा सबसे सुरक्षित था, जो उन्हें सीधा बाहर की तरफ छोड़ने वाला था। उस दरवाजे से बाहर निकलने पर उन्हें बाहर काफी सारी लाशें दिखाई दी, उनमें से मर्चेंट फैमिली के गार्ड्स की थीं तो कुछ अभिमन्यु को बचाने के लिए आए लोगों की। उन्हें देखकर इशिका ने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने मायूस होकर कहा, मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। ये सब मर्चेंट फैमिली की वजह से हो रहा है, जिन्होंने कभी इंसानों की कीमत नहीं समझी। आई होप कि इन सब के बाद उन्हें अक्ल आ जाए, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभी भी उनके लिए वहां से छुपकर बाहर निकलना आसान नहीं था, चारों तरफ गार्ड फैले हुए थे। अभिमन्यु उन तीनों को लेकर काफी सावधानी से दिशांक की तरफ बढ़ रहा था। किस्मत से दिशांक ने उन्हें देख लिया था। थैंक गॉड मिस सिंघानिया और बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, दिशांक ने राहत की सांस लेकर कहा। फिर वो पृथ्वी की तरफ देखकर बोला, मुझे कुछ गार्ड के साथ उन्हें लेने के लिए जाना होगा, मुझे कवर दो। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी धरी। दिशांक और पृथ्वी कुछ गार्ड के साथ उन्हें लाने के लिए चले गए। वो लोग सुरक्षित वापस उनके पास आ चुके थे। केशव ने राधिका को सही सलामत देखा तो उनके चेहरे पर सुकून के भाव थे। आखिरी बार जब वो राधिका से मिली थी तब आदर्श ने उन्हें बंदी बना रखा था और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। एक पल के लिए केशव और राधिका की नजरें मिली, फिर केशव ने नजरें चुराते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। बाकी सबको भी यहाँ से ले जाने की तैयारी करो, इतना आसान नहीं होने वाला यहाँ से निकलना। वो लोग हमें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, राधिका ने जवाब दिया। वो लोग वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे तो वहीं उनसे कुछ दूर थोड़ा ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, जिसके अंदर अर्पित और आदित्य थे। आदित्य को इसका अंदाज़ा पहले ही था कि कैसे न कैसे करके वो वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अर्पित के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। वो इतनी आसानी से अपने इस नुकसान को भूल नहीं सकता था। अर्पित ने अपनी गन को लोड की और उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरे इस कदम के बाद डैड बहुत नाराज होंगे, पर इन्होंने जो किया है उसके बाद ये मरना ही डिजर्व करते हैं। अर्पित की पोजीशन देखकर आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने उसकी नज़रों को फॉलो किया और नीचे की तरफ देखा तो अभिमन्यु और इशिका दूसरी तरफ खड़े थे। बेवकूफ़ी मत करो अर्पित, हम इन्हें ब्लैकमेल करके यहाँ से लेकर आए थे तो इन्हें कभी ना कभी यहाँ से जाना ही था। इन्हें जाने दो और हमारा भी यहाँ से निकलना सही रहेगा, आदित्य ने काफ़ी प्यार से अर्पित को समझाने की कोशिश की। इससे पहले कि आदित्य अर्पित को रोक पाता, अर्पित ने अभिमन्यु को पॉइंट करते हुए शूट कर दिया था। प्लीज़ पढ़कर रेटिंग और समीक्षा जरूर दीजिएगा। दूसरा, कई बार किसी किसी को कहानी के कुछ भाग नहीं दिखते हैं, जैसे कि एक रीडर ने कमेंट में लिखा था कि उन्हें द रिप्लेस्ड ब्राइड के 81 से 90 तक के पार्ट नहीं दिख रहे हैं, तो वो जाकर अपना ऐप अपडेट कर लें। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपडेट में ग्लिच आ जाता है, तो कई बार डेवलपर लाइव काम करते हैं तो चीज़ें स्टक हो जाती हैं, तो आप प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट करते रहें। बाकी मुझे और बाकी लोगों को सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, आप अगर अपडेट करेंगे तो आपको भी ठीक से दिखने लग जाएगा।